संसार में विषयाशक्त पुरुष है वो पापी है, परमार्थ की ओर चलने वाले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते से हटना पाप ही तो है। मान बड़ाई को चाहने वाला नीचे गिराने वाली बात है। हर एक काम में स्वार्थ को ही देखते हैं, ये कितने पतन की बात है। परमार्थ का मार्ग सबसे उत्तम है। अपने शरीर और रुपयों का हर्जा भी हो जाए और दूसरों को लाभ होता है, ये असली लाभ है, ये बात समझने की है। हर एक आदमी के साथ जो स्वार्थ का व्यवहार करते हैं ये बड़ा भारी अपराध है। जिस समय भगवान की चर्चा चलती है, वैराग्य की बात चलती है, या घर में कोई मर जाता है, मुर्दा लेकर मशान में जाते हैं, अपने सामने वो मुर्दा जलता है, ऐसे समय में जो वृत्ति रहती है ये वृत्ति हरदम रहनी चाहिए। यदि ऐसी वृत्ति हरदम रहे तो उद्धार होने में संदेह नहीं है। खूब गहराई से सोचना चाहिए, शरीर मरेगा, लोग इसको उठाएंगे, मशानों में ले जाएंगे और लकड़ियों में जलाएंगे, राख हो जाएगी, वो किसी के भी काम नहीं आएगी। यदि पता चल जाए कि मुर्दे की राख है तो लोग भाग जाएंगे। जो आज हमारे सामने बोलते हैं कि हम आपको बहुत चाहते हैं, आप हमारे लिए बहुत बड़े हैं, ये हैं वो हैं, हमारी राख से भाग जाएंगे। इसलिए दूसरों के काम में शरीर को लावे, यही बुद्धिमानी है। अपने को ये तो पता है नहीं कि मौत कब आएगी। आप सोचो कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में आप मरोगे, उस घर से आपका कोई जानकारी का संबंध भी नहीं रहेगा। ये मेरा कमरा है, ये मेरी अलमारी है, इस अलमारी में मेरा पैसा है, कुछ पता नहीं रहेगा। फिर क्या काम आया भाई? इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसमें लग जाना चाहिए। भगवान का भजन ध्यान नित्य निरंतर तत्परता के साथ करना चाहिए। केवल शरीर को पालते रहते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छे ठंडी हवा में रखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ये मुर्दे का ही श्रृंगार है। शरीर तो मुर्दा है, जैसे मुर्दा का श्रृंगार करने से क्या फायदा, ऐसे ही शरीर को खूब खिला पिला कर केवल आराम और सुख भोग में पड़े रखोगे क्या फायदा। यदि अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया जिस काम के लिए शरीर मिला तो बड़ा भारी धोखा हो जाएगा। शरीर को भोजन इसलिए दो कि अभी इससे काम लेना है। हमने संतों की बात सुनी है, ध्यान से सुनना, हे भगवान क्या बात कहते हैं। हमने संतों की बात सुनी है, वे शरीर को रोटी डालते थे, भोजन करते थे, ये समझ गए कि शरीर कुत्ता है, इसको रोटी डाल दो। कुत्ता भौंकता रहता है, ऐसे शरीर की भूख है, ये हमारे पीछे न पड़ जाए, भजन में बाधा न पड़ जाए, इसको कुत्ता समझ के जैसे रोटी डालो ऐसे डाल दो। ज्यादा स्वाद शौकीनी में मत जाओ। अपने तो जितने मनुष्य देवता प्राणी है सबको आराम पहुंचाओ, सबका हित करो, तब हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। अपना अपना स्वार्थ तो पशु पक्षी भी साधते हैं। जो मनुष्य शरीर पाकर दूसरों की सेवा नहीं करता है, वह आगे 84 लाख योनियों में तकलीफ पाते हुए भटकता फिरता है। यदि सकाम भाव से भी सेवा करो तो भी अच्छी बात है, पर निष्काम का भाव की होड़ नहीं है। एक चीज दी वो समझ में नहीं आ रही, जिनका चिट्टी से देवता प्रयत्न सेवा करने का भाव है, चिट्टी क्या होती है पता नहीं, वह परम पद भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। माने जो दूसरों की सेवा करने का भाव रखता है देवता पर्यंत सब पर, सारे सृष्टि मात्र में सबको प्रसन्न करने का भाव है, वह परम पद भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य मनुष्यों को भी सुख नहीं देता, सारे मनुष्यों की बात जाने दो, अपने कुटुंबी लोगों को ही सुख नहीं देता, अपने पिता माता स्त्री पुत्र सास ससुर को सुख नहीं देता, उसका आगे का भविष्य बड़ा कष्टमय है, कंटकमय है। कंटकमय कांटे ही कांटे हैं। इस बात का अभी ध्यान करो, फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। स्वार्थ त्याग कर सेवा करो। ऐसे ही स्त्री भी पति की सेवा करके परम धाम को प्राप्त हो जाती है। कोई स्त्री कहती है मैं तो केवल भगवान का ही भजन करती हूं, मुझे पति से क्या लेना देना, मैं क्यों सास ससुर की सेवा करूं, जब मुझे भगवान के भजन से ही कल्याण करना है, फिर पति सेवा और परिवार की सेवा का क्या मतलब है। ऐसा जिस स्त्री का भाव होता है उससे भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे ससुर के रूप में, सास के रूप में, पति के रूप में मैं ही हूं, तुम उसकी अवहेलना करते हो, तो मेरा कौन सा तुम भजन करके बढ़िया काम कर लोगे। पति से अलग भगवान को मानना, सास ससुर से अलग भगवान को मानना, या सास ससुर पति आदि को भगवान की दृष्टि से नहीं देखना, ये मूर्खता की बात है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर यदि 1 साल तक ब्रह्मचर्य से रह जाए तो कितने ही अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े अश्वमेध किए। आज के जमाने में वो अश्वमेध यज्ञ करने संभव नहीं है, इतना बड़ा खर्चा कौन करे, किसके पास इतना धन है। परंतु स्त्री और पुरुष यदि ब्रह्मचर्य से रहें, स्त्री पुरुष की ओर भोग दृष्टि से न देखे, स्त्री पति को भोग दृष्टि से न देखे, तो कितने ही अश्वमेध यज्ञ से ऊंचा फल प्राप्त होता है। हम सब लोगों को हृदय से वैराग्य का पाठ पढ़ना चाहिए। सत्संग की बातें मिलती हैं, इनको हीरा पन्ना रतन से ज्यादा कीमती समझनी चाहिए। हम सत्संग में जा रहे हों, ध्यान से सुनना, हम सत्संग में जा रहे हों और रास्ते में 1 करोड़ रुपए का हीरा मिल गया, और उधर यदि रत्न लेकर के हम वापस मुड़ गए और सत्संग की बातों को छोड़ दिया, तो आपने बहुत बड़ा घाटा कर लिया। करोड़ों रुपए के रत्न को छोड़ करके भी आपको सत्संग में जाना चाहिए। हमाके मन में एक बात आवे है, संसार में रहो, साधारण वेश बना के रहो, वेश तो बनाओ एकदम साधारण। ऊपर से लोग यह न कहें कि महात्मा है, साधु है, क्या है, कुछ नहीं। वेश तो बनाओ साधारण, और मन के भीतर महापुरुषों के जैसा हमारे अंदर त्याग बैराग का भाव होना चाहिए। आजकल ये बातें देखने में कम मिलती हैं। ऊपर त्याग का स्वांग रखते हैं और अंदर स्वार्थ भरा रहता है, उल्टी बात। अरे ऊपर स्वांग साधारण बनाओ, अंदर वैराग्य रखो। ऊपर वैराग्य दिखाएंगे, अंदर से लेने की इच्छा रखेंगे। मनुष्य जन्म पाकर अपना मूल काम नहीं किया तो फिर हमसे तो पशु अच्छे हैं। जिन पुरुषों में शील, विद्या, दान, तपस्या आदि नहीं है, वे पशुओं से नीचे गिरे हुए हैं। कोई पूछे कि हम साधन भजन करते हैं, फिर भगवान को प्राप्त होने में क्यों देरी हो रही है, तो कहते हैं उसमें साधन की और विश्वास की कमी है। हर एक मनुष्य को अपनी उन्नति एवं परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा से जब आपका मिलना हो जाएगा तो उसके पश्चात संसार के लोगों को भी उस ओर लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे में अपनी आत्मा को लगाकर बसते हैं, वे संसार में रहते हुए भी मेरे में रह रहे हैं। दिखते तो संसार में रहते हुए, रहते मेरे में। और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो दूसरों को भगवान की प्राप्ति के लिए बढ़ाते हैं। इन सारी बातों को सोचते हुए अपने को उन्नति के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। साधक इतना उच्च कोटि का हो सकता है कि वो जहां जाकर थोड़ी देर ठहर गया, उस स्थान के वो परमाणु बदल सकता है, वो स्थान तीर्थ बन सकता है। ये सारी बातें श्रद्धा विश्वास पर निर्भर हैं। आप जब चलो और आपको कोई पशु पक्षी आदि दिखाया है, उनको आप प्रभु का स्वरूप समझते हुए देखो, आपके हृदय में कितना परिवर्तन तत्काल हो जाता है। और ये गलत बात भी नहीं है, सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है, आप इस दृष्टि से देखो। जैसे कोई काला चश्मा लगाता है उसको काला दिखता है, सफेद चश्मा लगाता है उसको सफेद दिखता है, पीलिए की बीमारी होती है तो पीला दिखता है, ऐसे भगवान का भाव रखोगे तो भगवान दिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जो आपको वृक्ष पक्षी दो दिखाई देती चीजें हैं, वो भगवान के रूप में दिखेंगे। यहां भगवान पहाड़ के रूप में है, यहां भगवान पक्षी के रूप में है, यहां पत्थर के रूप में है, बस भगवान ही भगवान है, आनंद ही आनंद दिखेगा। इसके अलावा शेष कुछ रहेगा ही नहीं। कहीं कोई मुर्दा ले जा रहा है, उस मुर्दे में भी भगवान है। ये बात बिना साधन भजन करने वाले कौन समझे, सत्संग के बिना कौन समझे। जब पशु पक्षी पत्थर में परमेश्वर है, मुर्दे में क्यों नहीं है? मुर्दा भी तो ऐसा ही है, शरीर ही है, पत्थर जैसा ही है। मूढ़ आदमी का संकल्प जब सिद्ध हो जाता है तो ज्ञानवान के संकल्प पूरे होने में कौन बड़ी बात है। संसार में आप किसी को मित्र बनाते हो, वो कभी आपका शत्रु हो सकता है, पर भगवान को आप अपना मित्र बनाओ, वो आपके कभी शत्रु नहीं होंगे। जो मनुष्य जिस भावना से संसार को देखता है, उसको उसी प्रकार संसार दिखाई देता है। सब कुछ भगवान है, दिखता वो भगवान, सुनता वो भगवान, सुनाई देता वो भगवान, ऐसा जानने वाला महात्मा भगवान के लिए बड़ा दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात, भगवान कहते हैं मृत्यु में भी मैं हूं, तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो साक्षात भगवान का रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वृक्ष के पास जाओ, आहा वृक्ष के रूप में भगवान, पत्थर के पास जाओ पत्थर के रूप में भगवान, पक्षी के रूप में भगवान। खोटे स्वभाव वाला कोई आदमी मिल जाए, कहीं देखो इस स्वभाव में भगवान, वाह ऐसा स्वभाव बना के आए भगवान। उस व्यक्ति का भाव कुछ और ही हो जाता है, उसके सामने अच्छा बुरा जो होता है, जो दिखता है, वो भगवान से अलग नहीं होता। सारा संसार उसे नारायण रूप में दिखाई देने लगता है।
गोविंदो गुण गायो निज जग में, क्या कमायो बावरे। गोविंदो गुण गायो निज जग में, क्या कमायो बावरे। गोविंदो गुण गायो निज जग में। माटी की एक बूथ बनाई, धर्यो आदमी नाम रे, माटी की एक बूथ बनाई, धर्यो आदमी नाम रे, आप हाले आप चाले, आप हाले आप चाले, भलो बसायो गाम रे, गोविंदो गुन गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, राम भजन गुन गायो नि जग में, गोविंदो गुन गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुन गायो नि जग में, आकड़े को पेड़ लगायो, खायो चावे आंबरे, आकड़े रो पेड़ लगायो, खायो चाहे आंबरे, जे तू प्राणी सुख चावे तो, जे तू प्राणी सुख चावे तो, रटले हरि का नाम रे, जे तू प्राणी सुख चावे तो, रटले हरि का नाम रे, गोविंदो गुण गायो नि जग वे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुण गायो नि जग, एरन की थे चोरी की नी, कियो सुही को दान रे, एरन की थे चोरी की नी, कियो सुही को दान रे, ऊपर चढ़ने देखण लाग्यो, ऊपर चढ़ने देखण लाग्यो, लेवण आवे विमान रे, ऊपर चढ़ने देखण लाग्यो, लेवण आवे भी मान रे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, गोविंदो गुण गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, पत्थर की एक नाव बनाई, उतरियो चाहे पार रे, पत्थर की एक नाव बनाई, पत्थर की एक नाव बनाई, उतरियो चाहे पार रे, कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सा सुनो भाई संता, डूबे लो मझदार रे, कहत कबीर सा सुनो भाई संतो, डूबे लो मझदार रे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुण गायो नि जग में, आ गोविंदो गुण गायो नि जग में, क्या कमायो पावरे, गोविंदो गुण गायो निजग में, गोविंदो गुण गायो निजग में, गोविंदो गुण गायो निजग में।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण।